दिन भर 18 जून दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दिखाया दम। भारत के सामने जीत के लिए 339 रन की चुनौती। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार चौथे दिन बंद, अलग राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन। और फ्रांस में जारी है संसदीय चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान।
लोगों का कहना ये है कि मैक्रों को हमने प्रेसिडेंट बना दिया, अब उसको ठीक तरह से पार्लियामेंट्री मेजोरिटी देके देख लेते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। क्रिकेट के चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला लंदन के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान के शानदार शतक की बदौलत भारत के सामने जीत के लिए 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। खिताब बचाने उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट सस्ते में खो दिए हैं। अब तक दोनों देशों के बीच वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 8 भारत जीता है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा है कि ब्रेक्जिट पर होने वाली आगामी बातचीत में कोई समझौता ना होना ब्रिटेन के लिए एक बहुत बहुत बुरा नतीजा होगा। उनका यह बयान प्रधानमंत्री टेरेजा मे की राय के विरोधाभास के तौर पर देखा जा रहा है, जो यह कहती रही हैं कि यूरोपीय संघ के साथ बुरे समझौते के बजाय किसी समझौते का ना होना बेहतर है। लेकिन बीबीसी को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने जोर देकर यह भी कहा कि ब्रिटेन को सज़ा देने के मकसद से किया गया समझौता और भी बुरा होगा। उधर कंजर्वेटिव पार्टी की नेता और ब्रिटिश संसद की नेता एंड्रिया लिट्सम ने कहा कि ब्रेक्जिट समझौते की बातचीत 2 साल में पूरी करना संभव है। उन्होंने कहा,
politicians right across the EU and in the United Kingdom,
जहां आपके पास यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में ऐसे नेता हैं जो सफल नतीजे चाहते हैं, जो कम दरें, कम बाधाएं, हमारे बीच मुक्त व्यापार, सुरक्षा में सहयोग और काफ़ी कुछ चाहते हैं, इसे दिए गए समय में निपटाना पूरी तरह संभव है। ये थे ब्रिटिश संसद की नेता एंड्रिया लिट्सम के शब्द। सेंट्रल पुर्तगाल के पेद्रागो ग्रेन्स जिले के घने पहाड़ी जंगल में आग लगने से कम 62 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग झुलस गए हैं। आग से बचकर भागने की कोशिश में कई लोग अपनी ही कारों में जल गए। आग कई तरफ से बढ़ रही है और सैकड़ों दमकलकर्मी उस पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। पुर्तगाली प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्ता ने कहा है कि आग संभवतः बिजली गिरने की वजह से लगी। पुर्तगाल में गर्मियों के मौसम में जंगलों में अक्सर आग लग जाती है, लेकिन एक घटना में एक साथ इतने लोगों की मौत का यह पहला मामला है। पुर्तगाल में छुट्टियाँ बिताने गए ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार कैलेब ने बताया,
In recent times, there has been a massive proliferation.
हाल के दिनों में वहाँ यूकेलिप्टस और चीड़ के पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं और वे काफ़ी घने हैं। वे रास्तों और सड़कों के एकदम किनारे तक फैले हुए हैं। बतौर ऑस्ट्रेलियाई मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि वहाँ आग का एक गोला बन गया होगा। तेज़ आंच में यूकेलिप्टस की पत्तियों से तेल निकलता है और उसमें फंसने वाले के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। ये थे ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार कैलेब क्लफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में संसदीय चुनावों के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की साल भर पुरानी पार्टी रिपब्लिक ऑन द मूव के बड़ा बहुमत हासिल करने के आसार हैं। अनुमान है कि उनकी पार्टी नेशनल असेंबली की 3/4 सीटें जीत सकती है। पार्टी के आधे से ज़्यादा उम्मीदवार नए हैं और कभी सरकारी पदों पर नहीं रहे हैं। पिछले संसदीय चुनावों के मुकाबले मतदान प्रतिशत में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इराकी सेना ने कहा है कि 8 महीने के संघर्ष के बाद उन्होंने पुराने मुसल शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक हमला शुरू किया है। सेना के बयान में कहा गया है कि विशेष बल और संघीय पुलिस बल दक्षिण और पश्चिम दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि कई घंटों की लड़ाई के बाद उसने इराकी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। बीते कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि चरमपंथी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव। जोश है, उत्साह है और सामने लक्ष्य भी आ चुका है। जी हाँ, ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ओवल मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा है और भारत को जीत के लिए मिला है 339 रन का लक्ष्य। लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। भारत ने 2 विकेट गंवा दिए हैं, जिनमें इनफॉर्म रोहित शर्मा जो ओपनर हैं भारत के और कप्तान विराट कोहली दोनों पेविलियन लौट चुके हैं। स्कोर बोर्ड पर अभी जुड़े हैं सिर्फ 11 रन। भारत को बनाने हैं 339 रन। मैच का टॉस भारत के कप्तान विराट कोहली ने जीता और पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पाकिस्तान को फकर जमान और अजहर अली की ओपनिंग जोड़ी ने दमदार शुरुआत दिलाई। फकर ने 114 और अजहर ने 59 रन बनाए। इसके बाद हफीज के नाबाद 57 और बाबर के 46 रनों की मदद से पाकिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 338 रन बनाए।
339 रन इस मैच को जीतने के लिए और अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल को फिर से डिफेंड करने के लिए।
श्रोताओं, दिन भर में हम आगे देश दुनिया की दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन आज आप हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे नहीं सुन पाएंगे। वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे फाइनल मुकाबले के तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम आवाजें। लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उर्दू सेवा के सहयोगी खालिद करामात। स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार आदेश कुमार गुप्त। हमारे साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा और पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के मामा महबूब हसन भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे लंदन का। खालिद करामात साहब, स्वागत है। आधा मैच हो चुका है। शुरुआत में हमने देखा था भारत के फैंस ज़्यादा उत्साह में थे, लेकिन अब लगता है तस्वीर का रुख कुछ बदल रहा है। क्या स्थिति है लंदन में?
जी, यहाँ पर फैंस की तादाद इंडियंस की डेफिनेटली ज्यादा है। भारतीय फैंस पाकिस्तानी फैंस से बहुत ज्यादा हैं। और जब मैच शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शायद इतना चुका ही पाकिस्तानी फैंस हैं, लेकिन जब फखर जमान ने और अजहर अली ने खुलकर चौके और छक्के लगाने शुरू किए तो अचानक जो है उस नीले समंदर के अंदर से सब लहरें सी उठने लगी और पाकिस्तानी फैंस जो है उछल उछल के अपने खिलाड़ियों को शाबाश दे रहे थे। लग रहा था कि कोहली जो है इंडिया जो है बेस्ट चेसर है। लग रहा था कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है कि पाकिस्तान को बैटिंग देकर उन पे प्रेशर डालने का, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो शानदार बैटिंग करके उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा टोटल पोस्ट किया है।
जी खालिद साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा साहब। और हम बता दें श्रोताओं को भी और शर्मा साहब को भी कि इस फाइनल मैच के पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स ने बड़ी तारीफ की थी विराट कोहली की और लिखा था आप भारत के किसी भी शहर की सड़क से गुजरें तो उनका चेहरा आपको तमाम होर्डिंग्स पर दिखेगा। 1.3 अरब की जनसंख्या वाले देश में बाजार का सबसे योग्य और शायद सबसे लोकप्रिय हस्ती होना अपने किस्म का दबाव लेकर आता है। तो क्या उसी दबाव में आज बिखर गए विराट कोहली? राजकुमार शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा।
नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। आमिर हम सभी जानते हैं कि बेहतरीन गेंदबाज हैं और नए बॉल पे, क्योंकि रोहित जल्दी आउट हो गए, विराट खेलने गए और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की आमिर ने वो बहुत शानदार थी और खराब शॉट खेले विराट और आउट हो गए। तो क्रिकेट में ऐसा होता है, हर बार आप रन नहीं बनाते हैं, कभी कभी आप फेल भी हो जाते हैं, तो शायद ये आज एक ऑफ डे था विराट कोहली का।
जी, विराट कोहली तो फेल हो गए हैं। स्कोर है अभी 21 रन, 2 विकेट जा चुके हैं। अब क्या उम्मीदें हैं राजकुमार शर्मा साहब, आप किस तरह की उम्मीदें लगा रहे हैं भारतीय टीम से?
देखिए, अभी हमारे पास बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब काफी मुश्किल हो गई है क्योंकि दोनों मेन बल्लेबाज आउट हो गए हैं और अभी जरूरत है इस जोड़ी को एक पार्टनरशिप बनाने की, क्योंकि अगर ये लंबी पार्टनरशिप होती है 100-125 रन की तो उसके बाद फिर बल्लेबाजी हमारे पास है महेंद्र सिंह धोनी, केदार यादव और पांड्या के रूप में, यहाँ तक कि अश्विन और जडेजा भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस समय जरूरत है एक पार्टनरशिप की। अभी अगर एक विकेट या 2 विकेट गिर जाते हैं तो ये मैच अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा।
जी, यानी उम्मीदें अभी बरकरार हैं, एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं। खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के फैंस जो वहाँ लंदन में इस समय मौजूद हैं, जहाँ आप वेन्यू पर हैं, उनका क्या मानना है, वो किस तरह से देख रहे हैं फिलहाल की स्थिति को?
देखिए फैंस जो हैं बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है उसने जरूर बुरा स्टार्ट किया, पहले गेम में जरूर हारी, लेकिन उसने राइट टाइम पे बिल्कुल सही वक्त पर पीक किया है। उसकी परफॉर्मेंस बॉलिंग और बैटिंग दोनों ने पीक किया है, और जब इंग्लैंड को उन्होंने चारों शाने चित किया तो फैंस कहते हैं कि उनके ख्याल में ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और ये बात इस बात का सबूत थी कि टीम जो है अब तैयार है फाइनल के लिए और किसी भी टीम का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि इंग्लैंड जो है इस टूर्नामेंट के लिए हॉट फेवरेट थे। कहा जा रहा था कि इंग्लैंड ही ट्रॉफी उठाएगी, और फैंस को लगता है कि जब उन्होंने इंग्लैंड को हराया तो वो आसानी अब इंडिया को भी हरा सकते हैं।
जी, और चुनौतियां भारत के सामने भी कम नहीं थी। खालिद साहब, हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत की थी तो टीम के सामने कई सवाल थे। कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली के बीच मनमुटाव की खबरें थीं। सवाल भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक रिश्तों पर भी पूछे जा रहे थे। कई बार कप्तान कोहली से पूछा गया क्या इन हालात के बीच भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बने उत्साह ने खुद ही दे दिया है। भले इस समय उत्साह भारतीय खेमे में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना या फिर पेशावर, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, हर जगह मैच शुरू होने के पहले एक सा उत्साह था। पाकिस्तान में उत्साह अभी भी है, भारत में भी कई जगह दिख रहा है। और जहां तक मैच देखने वाले लोगों के आंकड़ों के बारे में बात की आईसीसी ने, तो आईसीसी का कहना था कि आज के मैच में नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच लीग राउंड में जो मैच हुआ था साल 2012 के बाद, उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा थी। अनुमान है कि 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस मैच को देखा था, और आज के मैच के लिए 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मैच को देख रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है टेलीविज़न के जरिए। क्या भारत और पाकिस्तान का मैच कुछ अलग होता है? मैच के पहले मैंने यही सवाल पूछा था भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल से, तो उनका क्या कहना था जरा सुनिए।
इंडिया पाकिस्तान के मैच में थोड़ी सी अलग बात होती है, क्योंकि एक तो सारा नेशन देख रहा होता है। आपको जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि ये मैच जरा थोड़ा सा बहुत हाइप पे चला जाता है, पर आफ्टरऑल ये है, ये क्रिकेट मैच ही है।
ये क्रिकेट मैच ही है। ये थे मदन लाल, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी, और हम आपसे जान लेते हैं आदेश जी कि क्या है ताज़ा सूरत हाल, स्थिति क्या है मैच की।
जी देखिए, अभी 22 रन बने हैं भारत के, 2 विकेट गिर चुके हैं, और निश्चित रूप से जैसा कि राजकुमार शर्मा जो कि विराट कोहली के कोच हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि इस समय भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन उनका ये भी कहना सही है कि अगर एक अच्छी साझेदारी होती है तो फिर इस मैच में कुछ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से इस समय पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ही भारी है, और इसकी वजह बिल्कुल साफ नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की थी, और वहां से जो बुनियाद उन्हें मिली उसके बाद पाकिस्तान मैच में भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो वहां पर भी उन्हें ड्रीम स्टार्ट मिला। 2 स्टार बैट्समैन जो कि इनफॉर्म थे, जैसा कि आपने खुद कहा, अगर वो पवेलियन में बैठकर मैच देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो मैदान में बल्लेबाज हैं उनकी हालत आसानी से समझी जा सकती है।
जी आदेश जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैच की फिलहाल जो स्थिति है, आपने कहा एक बड़ी पार्टनरशिप की दरकार है, विराट कोहली भी चाह रहे होंगे कि बड़ी पार्टनरशिप हो, क्योंकि आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं, क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं उनके लिए?
देखिए, अभी काफी मुश्किल है, पाकिस्तान का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है, और एक बेहतरीन स्टार्ट मिला है, उन्होंने 2 स्टार प्लेयर इंडिया के आउट कर दिए हैं, तो प्रेशर काफी ज्यादा है इंडिया के ऊपर, और जैसा मैंने कहा एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है, और अभी बल्लेबाजी बहुत डीप डाउन तक है इंडिया की, तो लेकिन जरूरत है कि कोई जिम्मेदारी ले और एक बिग 100 बनाए, लंबा 100 बनाए, या तो युवराज सिंह या शिखर धवन।
विकेट भी बचाने हैं और रन रेट का भी ध्यान रखना है। श्रोताओं, हम मैच की खबर पर लौटेंगे, लेकिन अभी बात पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाके में चल रहे आंदोलन की। अलग राज्य को लेकर बुलाए गए बंद का 4th दिन है। आज दार्जिलिंग और आसपास के इलाके में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं रवि प्रकाश अपनी इस रिपोर्ट में।
गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान आज फिर से हिंसा हुई है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में संपूर्ण बंद के 4th दिन कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इधर कल की हिंसा में मारे गए 3 लोगों के शवों के साथ दार्जिलिंग में सैकड़ों लोगों ने काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। गोरखा नेता विमल गुरुंग ने लोगों से ब्लैक डे मनाने का अनुरोध किया था। चौक बाजार पर सुबह से ही लोग जमा होने लगे। इन लोगों के हाथों में काले झंडे थे, कुछ लोगों ने तिरंगा तो कुछ के कंधों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के झंडे भी थे। चौक बाजार पर प्रदर्शन में शामिल सरिता कार्की ने बीबीसी से कहा कि वे मारे गए लोगों को शहीद मानते हैं। सरिता कार्की ने कहा,
3 लोग जवान हुआ है ना, उसके न्याय के लिए हम आया है। 3 लोग का जो ममता बनर्जी ने वो पुलिस ने वो फायर करके मारा है ना, उसके न्याय के लिए आज हम सड़क पर उतरे हैं सर। हम आशा करते हैं कि हमारे मोदी सरकार जरूर हमको न्याय देंगे।
दार्जिलिंग के सुरेंद्र थापा भी सरिता कार्की की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा,
ये जुलूस हमारा चार पांच आदमी मर गया कल, उसके प्रतिवाद में है। और हम लोग का ये बोलना है कि विमल गुरुंग जिंदाबाद, वो ममता बनर्जी मुर्दाबाद।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज 12 घंटे के डुआर्स बंद का भी आह्वान किया था। इस दौरान पहाड़ से सटे न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुर दुआर जैसे मैदानी जिलों में भी जनजीवन प्रभावित हुआ। बागडोगरा एयरपोर्ट और NJP रेलवे स्टेशन से सिक्किम जाने वाली टैक्सियां और बसें आज नहीं चली। टैक्सियों का दार्जिलिंग आना पहले से ही बंद है। दार्जिलिंग में कैंप कर रहे पश्चिम बंगाल पुलिस के ADG सिद्धिनाथ गुप्ता ने BBC से कहा कि आज दार्जिलिंग में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। और सर एक और क्लेम कर रहे हैं वो लोग, 3 बॉडीज उन लोगों ने रिकवर की जिनका दाह संस्कार वो करेंगे, तो क्या आप भी एडमिट करते हैं कि 3 लोग मारे गए थे कल?
घटना में 2 लोग का तो हमारे पास कंफर्म था
जी,
एक सिलीगुड़ी में था, उसको हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं।
आंदोलनकारियों ने आज कलिम्पोंग के पास डालिम और गुरुबथान के पास आहले स्थित पंचायत भवनों में आग लगा दी। कलिम्पोंग में एक लाइब्रेरी और एक पुलिस बैरक में भी आगजनी की गई है। करसियांग में पुलिस की 2 बसों पर पथराव की सूचना मिली है। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने दार्जिलिंग के कई इलाकों में निषेधाज्ञा लगा दी है। इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दोबारा बातचीत की। उन्होंने ट्वीट कर पहाड़ के लोगों से शांति की अपील की है। रवि प्रकाश, BBC के लिए दार्जिलिंग में।
आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी की अगुवाई में देश के कई हिस्सों से दलित संगठनों के कार्यकर्ता जुटे। ये लोग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की रिहाई की मांग उठा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी रखी। हमारे सहयोगी संदीप राय भी जंतर मंतर पर मौजूद थे, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
यहाँ पे भीम आर्मी का प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और रावण को UP पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है उसके विरोध में, और उनकी रिहाई की मांग को लेकर के सैकड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम की अगुवाई भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की माँ कमलेश देवी भी आई हुई है। सहारनपुर के कई लोग आए हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज करके दलित लड़कों को जेल में डाला जा रहा है।
सहारनपुर में जो कांड हुए इनके पीछे एक साजिश है, क्योंकि यहाँ के जो इश्यू है उसको नॉन इश्यू करने के लिए, ताकि यहाँ का जो बैकवर्ड क्लासेस का लोग है वो जागृत नहीं हो जाए, इन्होंने सबसे पहले उन पर कुठाराघात किया है। यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनके 65 घरों को जलाया गया था। वो लोग जो अपराधी हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। मारने के जो साथियों ने वहाँ पर उनके आंसू पोंछे, उल्टा उन पर मुकदमा कायम कर दिया और उनको आज जेल में डाल दिया गया है।
कहीं भी पूरे देश के अंदर इन पर कभी भी इस तरह का कोई केस नहीं लगता। ये केवल दलितों को पीड़ित करने के लिए, उन्हें सताने के लिए, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे थे। सरकार को तो रिहा करना ही पड़ेगा।
लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार जो दंगाई है उनको छोड़कर जो पीड़ित लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में ठूंस रही है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी पीड़ित दलित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। संदीप राय, BBC हिंदी, दिल्ली जंतर मंतर से।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। फ्रांस में आज संसदीय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। मतदाता ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावने से बात की और सबसे पहले वोटरों की उदासीनता के बारे में ही पूछा।
जी हाँ, लोगों का उत्साह बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत खूबसूरत दिन है, बाहर धूप है 30 डिग्री के करीब, लोग बगीचे में जा रहे हैं, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, नुमाइशें देखने जा रहे हैं, लेकिन वोट करने नहीं जा रहे।
जो दूसरे दौर की वोटिंग है कितनी अहम है राजनीतिक पार्टियों के लिए?
ये तो बहुत जरूरी वोट है। हमने ये देखा कि जो दो बड़ी पार्टी थी, मतलब निकोला सार्कोजी की जो पार्टी जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी जो पार्टी, उन्होंने भी काफी वोट खो दिए हैं पहले राउंड में, और जो बड़ी सोशलिस्ट पार्टी थी उनके भी बहुत कम आए हैं, और मारिन ले पेन के तो बहुत ही कम वोट आए थे पहले राउंड में। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि दो राउंड होती है वोटिंग के लिए, पहले राउंड में सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं, लेकिन दूसरे राउंड में वही कैंडिडेट्स आगे जाते हैं जिनको 12.5% से ज्यादा वोट मिली। तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे तीन लोग होंगे राउंड में, और अब बातचीत चल रही है कि नेशनल फ्रंट को निकालने के लिए जो दो दूसरा नंबर का कैंडिडेट होगा वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेगा। तो इनके सीट अरेंजमेंट चल रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना ये है कि मैक्रों को हमने प्रेसिडेंट तो बना दिया, अब उसको ठीक तरह से पार्लियामेंट्री मेजोरिटी दे के देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर उन्होंने 50% औरतों को सीटें दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है।
अनुमान बता रहे हैं कि मैक्रो की पार्टी 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, तो ऐसे में जब ज्यादातर नए लोग होंगे तो एक बहुत बड़ी चुनौती राष्ट्रपति के सामने भी होगी।
जी हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति को इस मामले में बहुत अपने आप को मैच्योर दिखाना पड़ेगा, उनको बहुत चतुरता से काम लेना पड़ेगा। वैसे उन्होंने दिखा दिया है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, और ये जो पहले उनके चुनाव के बाद मई में चुनाव हुआ उनका, 8 मई को वो इलेक्ट हुए, तब से आज तक जो भी उन्होंने इंटरनेशनल एक्शन लिए है उसके साथ लोग बहुत खुश हैं। ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ जिस तरह उन्होंने बर्ताव किया है, लोग उनके साथ बहुत खुश हैं।
जैसा अनुमान बता रहे हैं कि मैक्रो की पार्टी जीतने जा रही है, इस जीत के क्या मायने होंगे उनके लिए?
एक तो उनका मायना है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चली है उसको कम कैसे करें, और इकोनॉमी को कैसे किस तरह से आगे ले जाए। दूसरी बात ये भी है कि ब्रेक्सिट और यूरोप का क्या फ्यूचर होगा। उनकी ख्वाहिश है कि जर्मनी और फ्रांस, जो दोनों यूरोप के जो लोकोमोटिव इंजन कहलाते थे, जो दोनों दो बड़ी इकोनॉमी जो यूरोप को आगे लेके जाती थी, उनकी अब से दोबारा से बहुत जुली मिली एक्शन होनी चाहिए।
ये थी वैजू नरावने। दोबारा लौटते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर, जहां भारत को लक्ष्य मिला है 339 रन का, और जवाब में भारतीय टीम 2 विकेट गंवा चुकी है, स्कोर है 33 रन।
ये बड़ा झटका, ये बड़ी मछली पसी।
338 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत को चाहिए 339 रन इस मैच को जीतने के लिए।
मौजूदा दौर में सब यही सवाल सभी के सामने होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल क्या भारत जीत पाएगा। अगर इस सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं, पिछले आंकड़ों को आप जानना चाहते हैं, तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। इस बीच में भारत को एक और झटका लग गया है, क्या ताजा अपडेट है आदेश जी?
जी देखिए, भारत का स्कोर केवल 33 रन है, और इन फॉर्म बैट्समैन जो कि इस टूर्नामेंट में शतक भी जमाने में कामयाब रहे थे, शिखर धवन, उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को कट करने की कोशिश की, उसके बाद वो एक कैच के रूप में आउट हुए, और मुझे लगता है कि ये भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। और मोहम्मद आमिर, एक तरह से उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी का जो किला था उसे ढहा दिया है, और जिस तरह से भारत के हाथ से अब ये मैच रेत की तरह फिसलता जा रहा है,
और हमारे साथ पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के मामा महबूब हसन साहब जुड़ गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के इटावा में रहते हैं। हसन साहब, स्वागत है आपका।
धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिल किधर है, दिमाग किधर है, किसके लिए दुआएं हैं, किसकी जीत की आप उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त?
सर, दिल हमारा हिंदुस्तान की तरफ है, दिमाग हमारा हिंदुस्तान की तरफ है, और हमें इस बात का बड़ा दुख है कि जैसा कि अभी हमने सुना कि 3 विकेट 1 विकेट और गिर गया, अभी इस बात से हम बहुत दुखी हैं
जी। अब क्या लग रहा है आपको कि आपके भांजे जो हैं सरफराज अहमद साहब, उनकी टीम को जीत मिलेगी इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, जो कि
पाकिस्तान? अभी, अभी 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 ऐसी बात नहीं है, हमारे अभी और प्लेयर हैं, हमें उम्मीद है कि अभी जो है हमारी भारत की विजय होगी।
जी, आपने उम्मीद का दामन पकड़ा हुआ है, और आंकड़े भी बताते हैं कि भारत ने 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान को 330 रन का लक्ष्य हासिल करके मात दी थी, लेकिन उस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली का बल्ला बोला था, जिन्होंने 183 रन बनाए थे। आज विराट कोहली पेवेलियन लौट चुके हैं, सस्ते में आउट हो चुके हैं, तो आप किस बना पर महबूब हसन साहब भारतीय टीम से उम्मीद लगा रहे हैं?
सर ऐसा है, हमें विराट कोहली जी के आउट होने से और रोहित शर्मा जी के आउट होने से हमें बहुत दुख है, लेकिन फिर भी अभी हमें उम्मीद है कि हमारे हमारी टीम में जो है महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, युवराज जी हैं, शेखर धवन जी हैं, तो हमें अभी उम्मीद है। मैं आशा करता हूं कि हमारी प्लेयर जो है धैर्य से खेले, जल्दी ना करें, और अभी हमें उम्मीद है कि हमारे भारत टीम की विजय होगी।
जी महबूब हसन साहब को तो उम्मीद है आदेश कुमार गुप्त जी, लेकिन आप खेल पत्रकार हैं, खेल के नजरिए से आपको क्या लग रहा है फिलहाल की जो स्थिति है उस समय मैच का पलड़ा आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं?
देखिए मैच का पलड़ा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के पक्ष में ही है, क्योंकि 339 रन भारत को बनाने हैं और 10 ओवर तक अगर भारत का स्कोर एक विकेट खोकर 80 के करीब होता तब रन औसत भी भारत की अच्छी होती, लेकिन जैसा कि ये 10वां ओवर चल रहा है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर है। हालाँकि युवराज सिंह कुछ अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं जता पा रहे हैं। धोनी अभी अभी पिच पर पहुंचे हैं और इस
क्या
जोड़ी पर
लगता है आदेश जी कि भारत ने कुछ गलतियां भी की, जैसे पहले जो लीग राउंड का मैच था उसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी की, बड़ा स्कोर बनाया, पाकिस्तान को दबाव में लिया, आसानी से मैच जीत लिया, आज टॉस का फायदा भारत नहीं उठा पाया। दूसरा जिस गेंद पर फखर आउट हुए थे वो नो बॉल हो गई, उसके बाद उन्होंने एक सेंचुरी बना ली, आपको लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं?
कई बार किस्मत के सितारे चमकते हैं और आज पाकिस्तान का दिन है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कल भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि अगर भारत टॉस जीता तो उसको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन कप्तान कोहली ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा किया, गेंदबाजी कोई बहुत अच्छा नहीं थी, शुरुआत में फील्डिंग भी खराब रही, कुछ कैचेज भी छूटे, रनआउट के मौके भी गंवाए गए, और आप देखिए कि पाकिस्तान बल्लेबाजों का दबदबा इस मैच में कितना रहा कि उनकी ओर से 27 चौके लगे और 9 छक्के, करीब 162 रन तो उनके बाउंड्री से ही आए, और उसके बाद कमाल की बैटिंग की फख्र जमान ने जिन्होंने 114 रन बनाए। और निश्चित रूप से आज का फाइनल मुकाबला अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान को काफी फख्र होगा फख्र जमान पर, और वो स्टार के रूप में जाने।
पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत की थी टूर्नामेंट की, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पाकिस्तान टीम जीत की दावेदार हो सकती है, और अभी 10 ओवर में भारत का स्कोर है 39 रन 3 विकेट जा चुके हैं, यानी 40 ओवर में भारत को 300 रन बनाने हैं,
एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ कप्तान सरफराज अहमद ने अपने दम पर मैच को जिताया, उसके बाद से पूरा टूर्नामेंट में पाकिस्तान का खेल बदलता चला गया, और आज जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, तो ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल में जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने ढेर किया था 211 रन पर और उसके बाद 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था, तो ऐसा लगता है कि जहां उन्होंने सेमीफाइनल को समाप्त किया था वहीं से मैच को उन्होंने शुरू किया है, और इस पाकिस्तानी टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं
खोने के लिए कुछ नहीं था। और हम आपको बता दें जैसा आदेश जी ने भी जिक्र किया कि फखर की बल्लेबाजी आज फखर करने लायक रही, तो कौन है भारतीय गेंदबाजों को रुलाने वाले फखर, अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो bbchindi.com के पन्ने का रुख कर सकते हैं, जहां उनको लेकर हमने एक प्रोफाइल किया है जिसमें आप उनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। हमारे साथ महबूब हसन साहब जुड़े हुए हैं। हसन साहब, हम एक आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे इस मैच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्या कहेंगे आप?
नहीं सर, बिल्कुल जो आपके क्रिकेट के अभी बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमारी टीम को पहले जो है बैटिंग करनी चाहिए, जो फील्डिंग किया थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बैटिंग करते तो उनको इतना अंदाजा नहीं लग पाता पाकिस्तान टीम को,
पाकिस्तान टीम को अंदाजा नहीं लग पाता, आपने आपका ये कहना है महबूब हसन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आदेश कुमार गुप्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस स्थिति में मैच खड़ा हुआ है जहां 47 रन है भारत का स्कोर, 3 विकेट गंवा चुका है, 339 रन बनाने, एक आखिरी संक्षिप्त कमेंट, आपको यहां से क्या स्थिति लगती है, मैच खत्म हो गया है या भारत के लिए कुछ उम्मीदें बाकी हैं?
भारत के दृष्टिकोण से सिर्फ ये होगा कि भारत कितने रनों से या कितने कम अंतर से इस मैच को हारता है, और अगर भारत जीतता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात होगी। वात्सल्य जी, जो कुंभ होता है वो तो 12 साल बाद आता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत किसी टूर्नामेंट के फाइनल में हो तो वो तो उसी दिन कुंभ होता है, लेकिन ऐसा लगता है ये कुंभ का मेला पाकिस्तान की तरफ खिसक गया,
पाकिस्तान की तरफ खिंच रहा है, जैसे लीग राउंड में एक तरफा मैच हो गया था, लेकिन अभी उम्मीदें बरकरार हैं। महबूब हसन साहब जो पाकिस्तान के कप्तान के मामा हैं, उनको उम्मीद है भारतीय टीम से, कई फैंस को भी उम्मीद है। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि आज हमने आपको संग संग गुनगुनाओगे की कड़ी नहीं सुनवाई, आप अगले हफ्ते ये सुन सकते हैं। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे शाकिर आलम। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक आप मैच और दूसरी खबरों के लिए लगातार bbchindi.com आ सकते हैं। हमारा ये पन्ना आपके साथ मौजूद है। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।